हमारे बीच में आदरणीय बहुमुखी प्रतिभा नलिनी दीदी भी विराजमान है। आप बाल्यकाल से ही 14 साल की उम्र थी और यज्ञ से जुड़े, 16 साल की उम्र में ही आपने आपका जीवन बेहद बाबा की सेवा में समर्पित किया। साकार बाबा मम्मा की पालना में पले और दीदी जी जब साकार बाबा मम्मा के प्यार की बातें सुनाते हैं, सुनते सुनते हम सभी भी उस प्यार के अंदर खो जाते हैं। दीदी के अंदर लेखन कला भी जबरदस्त है। आपने टीचर्स ट्रेनिंग की 5 बुक भी लिखी है जो सभी बहनों के लिए एक पथ प्रदर्शक बनकर के रह गई है। और साथ साथ दीदी घाटकोपर मुंबई और उनसे संबंधित अनेक सेवा केंद्र को आप संभालते हो। हम सभी जानते हैं टीवी के अंदर दीदी को भी मुरली वाली दीदी कहते हैं, मुरली का एसेंस दीदी द्वारा हम सभी देखते हैं, सुनते हैं। तो अभी हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे साधना के द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल।
ओम शांति, ओम शांति। एक बार ऐसा ओम शांति बोलो जो विश्राम धाम में जो चले गए हैं ना वो जाग जाएं। ओम शांति। ये विश्राम धाम भी है ना, बड़ा मजेदार है। इसको अभी रॉयल माया कहें या फिर रॉयल शांति धाम कहें, क्या कहें। जैसे ही बाबा की याद में बैठते हैं, विश्राम धाम हरेक को अपनी ओर खींचता है। और बाकी भी अभी समय कई कल आए होंगे, दोपहर में, सुबह में, शाम को, रात्रि को, तो थके हुए भी होंगे और अमृत वेले उठकर याद की यात्रा के लिए पहुंचे भी होंगे। आराम पूरा किया नहीं किया, कोई को नींद आई होगी नहीं आई होगी, और फिर नाश्ता भी करके आए सभी। तो नाश्ता करके आते हैं तो थोड़ा भारी हो जाते हैं, और उसमें भी फिर यहाँ बाबा के घर में बड़ा आराम मिलता है, बेफिक्र हो जाते हैं क्योंकि सारी चिंताएं सभी अपनी अपनी छोड़ करके आए हैं। सभी के मन में निश्चय निश्चित रूप का है कि अभी हम 3 दिन मधुबन में पट्टी के लिए जा रहे हैं, तो सब निश्चित और निश्चय और निश्चिंत भी है। तो इसीलिए और फिर ऊपर से आरामदायी सोफा मिला है बैठने को, कोई को कुर्सियां मिली हैं, तो बड़े मजे से बाबा के घर में। बाबा कहते हैं ना, रमणीक ज्ञान है, ज्ञान भी रमणीक। तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, तबीयत ठीक नहीं या कभी सुस्ती हुई, सोए सोए भी बाबा को याद कर सकते हो। तो हम बच्चे बड़े मजे से बाबा को याद करते हैं। तो इसीलिए कृपया आजू बाजू आपके जो भी विश्राम धाम में पहुंचे हो उनको उस वातावरण से जरा नीचे ले आइए। अपने को शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है, इसीलिए हर एक एक दो को जागृत करें। मैं समझ सकती हूँ हमारे कई बुजुर्ग भाई, कई बुजुर्ग हमारी माताएं भी बैठी हैं, उनके लिए तो मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि आपके ऊपर आपकी उम्र का भी थोड़ा प्रभाव रहता है, परंतु बाबा का ज्ञान ऐसा है कि उम्र तो हमारी यहाँ पर शरीर की गिनती में नहीं आती, क्योंकि यहाँ तो हर बाबा का बूढ़ा बच्चा, बूढ़ी बच्ची, बुजुर्ग बच्चे सभी यहाँ क्या हो जाते हैं, जवान होते हैं कि बूढ़े ही रहते हैं, जवान हो जाते हैं। अपनी प्यारी जानकी दादी को देखो, रतनमयनी दादी को देखो, यीशु दादी को देखो, गुलजार दादी को देखो, सभी क्या हैं, इतनी उम्र होने के पश्चात भी सभी के अंदर उत्साह और उमंग बरकरार है, है ना? तो आप सभी का उमंग उत्साह बरकरार है, हाँ, क्योंकि हम सभी का उमंग उत्साह सुनने का बरकरार होगा और मेरा सुनाने का बरकरार होगा तो क्या होगा, वायुमंडल भी वैसा ही बन पाएगा, क्योंकि वायुमंडल किससे बनता है, व्यक्ति से, व्यक्ति से वायुमंडल बनता है। इसीलिए हम जो भी यहाँ पर बाबा के बच्चे बैठे हैं, हम सब ये जिम्मेवारी के साथ बैठे कि अगर मैंने एक ने अगर सुस्ती की, आलस्य किया, आलस्य दिखाया, या फिर थोड़ा निंद्रा देवी की शरण में या गोद में गए, या फिर अपने विश्राम धाम में पहुंचे, तो क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन आजू बाजू आगे पीछे सबको लगेगा, ये ऐसी बीमारी है। तो इसीलिए सभी अलर्ट होके बैठे। और मैं हर वक्त एक बात कहती हूँ क्लास के भाई बहनों से कि मुझे भी आप लोगों का बहुत सहयोग चाहिए क्लास कराने में। मैं कराती नहीं हूँ पर मुझे करना होता है, तो करने के लिए मुझे भी अलर्ट रहना पड़ता है, तो फिर मैं अलर्ट रहती हूँ, लेकिन थोड़ा भी ध्यान कहीं गया ना, कोई नींद कर रहा है, कोई जुटका खा रहा है, कोई ऐसे सोया है, कोई ऐसे सोया है, कोई ऐसे सोया है, हाँ, विविध मुद्राएं, ड्रामा बड़ा वैरायटी है, एक की शक्ल न मिले दूसरे से। ऐसे ही जो विश्राम धाम में जाते हैं ना, उनकी भी क्या होती है, हरेक की मुद्राएं अलग अलग। वैसे देखा जाए तो उसमें भी बड़ी रमणीकता है, हम बड़ा आनंद ले सकते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, परंतु अभी तो हम सभी एंजॉय करने नहीं बैठे, क्लास एक दो के साथ शेयर करने बैठे हैं बाबा के ज्ञान की बातों को। तो इसीलिए क्या होता है, जब मेरा ध्यान कहीं चला गया तो जो मैं बताने जाती हूँ ना, वो थोड़ा खिसक जाता है। सुना तो जब कोई ने सुना तो बोला कि आपकी दीदी भी भूलने लगी है क्या, उनको भी भूल की बीमारी शुरू हो गई क्या, क्योंकि उन्होंने इतना ही सुना कि मैं भी भूल जाती हूँ। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनेंगे तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा और गलत फहमी नहीं होगी, नहीं तो अधूरी पॉइंट सुनेंगे, अधूरी पॉइंट का वर्णन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे गलत फहमी पैदा हो सकती है। अच्छा, अभी आते हैं सभी अलर्ट, पीछे हमारे भाई बहने सभी, बहुत अच्छा। तो अभी हम आते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर, साधना से शक्तिशाली वायुमंडल। तो साधना क्या होती है पहले वो थोड़ा समझ लेते हैं। साधना शब्द के साथ साधक और साध्य ये भी जुड़े हुए हैं। साधक माना जो साधना करता है, साध्य माना जिसको पाने के लिए वो साधना करता है, यानी हमारी मंजिल कहो, लक्ष्य कहो, किनारा कहो, तो ये होती है साधना उसके प्रति। और साधक अलग है, वो साधना करता है, और साध्य को पाने के लिए वो साधना करता है। तो दो के बीच में साधना होती है। तो वो दो कौन हैं? बहुत कोई हो सकते हैं। हर एक का अपना अपना लक्ष्य होता है साधना का। हर एक ने अपना जो लक्ष्य निश्चित किया हुआ होता है, वो उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए वो साधना करता है, यानी मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, एकाग्रता से उसको पाने के लिए जो विधि करनी चाहिए वो विधि वो अपनाता है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि विधि से सिद्धि, हमें विधि पूर्वक करना है तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी। उसी प्रकार हम राही हैं, हम राही हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के, तो हमें भी रास्ता तय करना है। हम जैसे यहाँ आते हैं, लक्ष्य है मधुबन पहुंचना, तो हम अपने स्थान से निकलते हैं और रास्ता तय करते हैं। उसमें ट्रेन भी होती, बस भी होती, टैक्सी होती, ऑटो रिक्शा भी होती, फिर फ्लाइट भी होती, हो सकता है हेलीकॉप्टर भी, कोई कुछ भी साधन हो सकता है, और हम उनमें बैठ करके या फिर उड़ करके, मन के विमान से उड़ करके, या फिर हम रास्ते तय करके हम यहाँ पहुँचते हैं। तो हमारी भी एक यात्रा है, एक स्थूल यात्रा, दूसरी है हमारी सूक्ष्म यात्रा। तो स्थूल यात्रा में तो हम सभी अपने स्थान पर पहुँच गए। मधुबन हमारा लक्ष्य था, हम सभी मधुबन में आकर के एकत्रित हो गए। अब हमें साधना करनी है, तो हम अपनी बात पर ही आते हैं, हमें क्या साधना करनी है ब्राह्मणों को। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है याद की यात्रा, क्योंकि अभी हम बच्चों को ब्राह्मण से सो फरिश्ता बनना है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं बाहें खोल करके। बाबा बहुत इंतजार में हैं कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी कर्मातीत बन करके, फरिश्ता बन करके, उड़ करके मेरी बाहों में आ जाए। तो हमारी अभी है याद की यात्रा, जो हमें जल्दी कर्मातीत बनाएगी, जो हमें फरिश्ता बनाएगी। परंतु फरिश्ता बनना हो चाहे कर्मातीत बनना हो, इन सभी मंजिलों पर पहुंचने के लिए, चाहे मुक्ति, जीवन मुक्ति हमारा लक्ष्य हो, चाहे फरिश्ता बनने का लक्ष्य हो, चाहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य हो, चाहे बेहद की सेवाओं में या हद की सेवाओं में, जो भी हमारा हद का या बेहद का लक्ष्य हो, टोटली जिस आध्यात्मिक लक्ष्य को लेकर के हमने चलना शुरू किया है, तो हमारे अंदर वो लक्षण आने चाहिए, और उन लक्षणों में परसेंटेज बढ़नी चाहिए। लक्षण तो हमारे अंदर बहुत सारे बाबा के बच्चों में आ गए हैं, जैसे आप सभी युगल यहाँ विशेष बाप दादा के और मधुबन के निमंत्रण पर बहुत उमंग, उल्लास और खुशी के साथ, हाँ विघ्न आया है प्रकृति का, फिर भी जितने आने थे उतने भले नहीं आए, लेकिन आप जो भी पहुंचे हो वो विजयी होकर के पहुंचे हो। अपने इस ब्रह्मचर्य की जो लक्ष्य आपको मिला कि लक्ष्मी नारायण, जैसे कल महिमा में सुना ना, सभी लक्ष्मी नारायण यहाँ पहुंचे हैं, तो लक्ष्य था हमारा लक्ष्मी नारायण बनना, तो उस हिसाब से लक्षण धारण किया। क्या लक्षण धारण किया? ब्रह्मचर्य व्रत की आजीवन प्रतिज्ञा ली। और किसके साथ ली? किसके साथ बंधे हम? रक्षाबंधन आ रही है तो हम किसके साथ बंधे? अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जो पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन है, और जो पुरानी पतित दुनिया को पावन दुनिया बना रहे हैं, तो हमने उनके साथ प्रतिज्ञा की है कि हम नई दुनिया पावन दुनिया को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, और साथ में हम किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो हम ब्रह्माचारी, ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्माचारी, तो हम इन दोनों के सहारे नई दुनिया को स्थापन करेंगे। ये हमारा बाप दादा से वायदा है, प्रतिज्ञा है, और उस प्रतिज्ञा का पालन आप सभी कर रहे हो प्रैक्टिकल, और उसमें भी आप विजयी हो, क्योंकि साधु संतों ने भी कह दिया इम्पॉसिबल, ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिख दिया कि अग्नि और कापूस एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन हम कौन है? याद करिए समान अपना, ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की, जिसकी ऊंचे ते ऊंची महिमा, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा गांव, ऊंचा तेरा सब कुछ, जिसकी इतनी ऊंची महिमा, उसके हम ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं। तो बहुत ऊंचे ते ऊंचा बेमिसाल मिसाल बने हो आप प्रैक्टिकल। उन्हों को भी नतमस्तक किया है। किसको? ऋषि मुनियों को, शास्त्रों को, साधुओं को, और जिनों की ये गलत मान्यता शास्त्रों के आधार पर बनी या ऋषि मुनियों के आधार पर बनी, जिसके भी आधार पर बनी, उन सभी आधारों को आपने झुकाया और आप उनके आधार मूर्त बने हो। ये मामूली बात नहीं। क्योंकि वो अभी आपसे अनुभव पूछेंगे कि आप कैसे बने, क्या आपके पास ऐसा जादू है जो आप अपने युगल सहित आप प्रभु के बने और नई दुनिया की स्थापना के लिए आपने कीचड़ में रहते कमल पुष्प के समान इतना सुंदर जीवन बनाया। अभी उनका टर्न है आपको पूछने का। भक्ति मार्ग में हम गए उनके पास, अभी रिटर्न में उनको हमारे पास आना है, तो आपके अनुभव उनको झुकाएंगे। तो आप सोचो आप कितने महान हुए। इसीलिए बाबा ने कहा ना, अपने को साधारण मत समझना। परंतु आज बाबा ने मुरली में कहा, मुझे कौन से बच्चे पसंद हैं? साधारण बच्चे। आपकी धारणा असाधारण है, लेकिन हम सभी बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल साधारण। आप लोगों के बीच में खड़े रहो, कोई ये कल्पना कर सकता है कि ये कितने तेजस्वी ब्रह्मचर्य व्रतधारी ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी हमारे बीच में खड़े हैं, जिनका वाइब्रेशन, जिनकी दृष्टि, जिनकी वृत्ति, जिनकी वाणी, जिनकी कृति, जिनका संग हमें भी पावन बनाएगा। आपकी तेजस्विता आपको नहीं महसूस होगी, आप दिखने में बड़े साधारण लगोगे, परंतु जब झुंड के बीच में, संगठन के बीच में आप खड़े रहेंगे ना, तो उन पतित आत्माओं को, विकारी आत्माओं को अंदर में यह आभास होता है कि ये कोई अलग लोग हैं, ये कोई अलग विशिष्ट व्यक्ति है, इनका मस्तक चमकता है, इनके नैनों के अंदर कुछ और है, ये उनको महसूस होता है। अभी शायद स्पष्ट अनुभव वो आपको ना भी सुनावे, लेकिन बाबा कहते हैं अभी वो समय आने वाला है जब बाबा के एक एक बच्चे के नैनों में क्या दिखाई पड़ेगा, मेरा बाबा दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए अपने को उससे अलग नहीं समझना, ये नहीं सोचना कि ये तो शिव शक्तियों में, और शिव शक्तियों में भी जो दादियां हैं, दीदियां हैं, उन्होंने ही दिखेगा। नहीं, इस गलत फहमी में नहीं रहना। बाबा कहते हैं मुझे कौन से बच्चे प्रिय हैं जो सच्ची दिल से मुझे याद करते हैं, भावना वाले बच्चे। बताया आज मुरली के अंदर, जो भावना से याद करते हैं। तो ये भावना हमारी कभी टूटे ना, हमारा ये बाबा के प्रति का जो स्नेह है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, या जो फरिश्तों वाला प्यार है, फरिश्ता जिसका कोई से रिश्ता नहीं, बैठे रिश्ते वालों के बीच में हो लेकिन न्यारे हो, प्रभु के प्यारे हो, भले सबके बीच में हो आप, लेकिन आपकी जीवन कितनी न्यारी है, क्योंकि आपने प्रभु को प्यारी जीवन बनाई है। इसीलिए प्रभु ने क्या किया, मुरली कहती है आज की, प्रभु ने अपना बनाया, तो हम प्रभु के बने हैं। इसीलिए हमें ये भूलना पड़ता है और भुलाते भी हैं कि मेरा रिश्ता किसके साथ, एक बाबा के साथ। कहने को सब रिश्ते हैं, ऐसे नहीं कि कोई बहन कभी अपने मित्र संबंधियों को ये कहे, पति का परिचय देते कि ये दे मेरा भाई है, इनसे मिलो। कहेंगी क्या हमारी बहनें, ऐसा परिचय देंगी अपने मित्र संबंधियों को? हाँ, अगर ऐसा परिचय दे तो मित्र संबंधी क्या कहेंगे? इसका खिसक गया है लगता है। पति भाई कैसे हो सकता है? बात तो बिल्कुल राइट है, पति को भाई नहीं कह सकते और पत्नी को बहन नहीं कह सकते, परंतु रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को माँ के रूप में देखा, पूज्य बापू गांधी ने अपनी पत्नी को माँ के रूप में देखा। क्यों देखा? क्योंकि तभी वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके, यानी वृत्ति को बदलना पड़ा। पर वो आपको पता हो, आपकी वृत्ति आपके जीवन साथी के प्रति क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष मत करना, कोई भी भूल से नहीं कहना। हालांकि बाबा ने क्या किया है, कमाल, बाबा ने देखो कमाल कर दी। ब्रह्मा है तो पुरुष, लेकिन शिव बाबा ने कहा ये मेरी वनी है, वनी समझ गए होंगे अभी, तो पत्नी है मेरी। तो शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने, दोनों माता पिता ने मिलकर के क्या किया, हम सभी को पैदा किया। इसीलिए ब्रह्मा में भी शब्द क्या आया, मां, ब्रह्म मां, तो वो हमारी मां है, और शिव बाबा मेरे पिता हैं और हम सब आपस में ब्रह्मा के संबंध से भाई बहने और शिव बाबा के संबंध से भाई भाई हैं। बस यही एक हमारा ईश्वरीय परिवार का नाता और संबंध है, इससे बढ़कर कोई नहीं संबंध। अब ये वृत्ति अंदर में हमारी पक्की जब हो जाती है, निश्चय बैठता है, निश्चित रूप से निश्चय बैठता है, संशयात्मक नहीं कि बहन मानू के ना मानू, माँ कहूं के ना कहूं, पवित्र भी रहना है, अगर पत्नी समझूं तो क्या होगा, हलचल होगी, कहीं ना कहीं माया थोड़ा हिला देगी। लेकिन नहीं, मैं बाबा का बच्चा हूँ, ब्रह्मा बाप का भी बच्चा हूँ और मैंने बाप से प्रतिज्ञा की है तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही है और प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा जैसे ही की, ब्रह्मा का मैं बच्चा स्वयं को समझा तो तुरंत बाबा ने कहा, तू है अभी अधर कुमार नहीं। अधर कुमार को भी क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कुमार, कुमार बना दिया आपको, अधर कुमार से कुमार बना दिया, तभी इजीली ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके। ऐसे ही माताओं को भी क्या बना दिया, ब्रह्मा कुमारी। सुना हमारी बुजुर्ग माताएं या थोड़ी उम्रवान माताएं, आप क्या बन गई हो? हाँ, पीछे से माताएं जवाब दो, हाँ कुमारी बन गई आप, और वो भी किसकी कुमारी, ब्रह्मा की, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अभी हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव बाबा श्रीमत देते हैं कि अब याद की यात्रा करो और स्थिति को कर्मातीत तक पहुंचाओ, तो श्रीमत हमको मिली है तो हम यात्री हैं, यात्रा पर हैं, और हमारा यात्रा स्थान तीर्थ स्थान कौन सा है, सच्चा सच्चा हरिद्वार, जो परम धाम है, सुख धाम और शांति धाम, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, और दोनों पावन धाम, निराकारी पावन धाम और सतयुगी पावन धाम। तो ये हमारा यात्रा का मंजिल है हमारी, तो हम सभी एक ही राह के राही हैं। अब यात्रा करते हैं, मंजिल पे पहुंचना है, किनारे पर जाना है, हमको अपने साध्य को प्राप्त करना है, तो रास्ते में बाबा कहते हैं क्या होता है, विघ्न भी आते हैं, तो हमें विघ्नों को भी जान लेना चाहिए। साधना साधनी है, साधक को साधना साधनी होती है, माना उसको रहस्यों के साथ प्राप्त करना होता है, और जब प्राप्त कर लेता है तो वो साध्य पर पहुंच गया, ये कहलाता है। तो हमें भी अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अभी हमारी वर्तमान बाबा कहते हैं मंजिल है, सभी को फरिश्ता बनना है, ब्राह्मणों को, और कर्मातीत स्थिति को पाना है। अभी हमें ये साधना करनी है। तो साधना में हमारी मुख्य साधना की विधि क्या है, याद की यात्रा। तो आज बाबा ने याद की यात्रा के बहुत सारे फायदे बता दिए, बताए ना कि अगर तुम बच्चे याद में रहोगे तो विकर्म विनाश होंगे, खुशी प्राप्त होंगी, एक बाबा की याद में रह सकोगे, कई फायदे बाबा ने, जैसे मैं एसेंस ऑफ मुरली पढ़ती हूँ तो प्रश्न उत्तर जो होता है उसमें ही बाबा ने कितने सारे फायदे बता दिए, और अगर मैं अभी बोलूं कि आप लोग सभी एक एक याद की यात्रा का फायदा बताओ, याद से क्या प्राप्ति होती है, आप जितने बैठे हो ना उतनी आप मुझे प्राप्तियां लिख करके देंगे। हर एक अगर एक एक भी लिखेगा ना तो इतने फायदे याद के द्वारा हमें मिलते हैं। तो ये याद बहुत शक्तिशाली है, परंतु हमें अपनी याद को इतना शक्तिशाली बनाना है कि मैं एक अकेली, सभी सुन रहे हैं पीछे, मैं एक अकेली अगर यहाँ पर योग शिविर का योग कमेंट्री कराती हूँ तो उसकी रिजल्ट क्या होती है, पूरी सभा के अंदर अगर मैंने उस स्थिति में रहकर बाबा को याद किया सच्चे दिल से और मैंने वह याद का वाइब्रेशन आप सभी तक पहुंचाया तो ये डायमंड हॉल का वातावरण क्या हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, एकदम शांति का हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ती है, एक साधारण व्यक्ति, तो भी देखो वातावरण कैसा हो जाता है, जो भी उस वातावरण के बीच जाएगा वो कितना पीसफुली बात करेगा, जोर से बात नहीं करेंगे, मूवी से बात करेंगे। तो साधारण व्यक्ति के शरीर छोड़ने पर इतना प्रभाव, यानी शरीर छोड़ने पर तो किसने छोड़ा, शांत स्वरूप जिसका स्वधर्म है उस आत्मा ने इस अशांति करने वाली जो प्रकृति है उसको छोड़ा। तो याद की यात्रा क्या कहती है, शरीर के साथ है हम, तो जो भी हमारी स्थूल कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां ये दोनों मिल करके क्या करती हैं, याद की यात्रा में विघ्न डालती हैं। विघ्न माना जो बात नहीं होनी चाहिए वो हमारे रास्ते में आवे, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करें, तो ये हमारे लिए विघ्न है। तो हम पहले शरीर की कर्म इंद्रियों से देखें, तो पहली धारणा तो सभी ने कर ली, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अन्न की परहेज, फिर सत्संग करना, रोज उस पिता परमात्मा को याद करना और पढ़ाई करना, मुरली का पठन पाठन मनन चिंतन और धारणा करना। तो हम देवता बनते हैं तो हम दैवी गुणों को धारण भी कर रहे हैं। तो ये तो हमारा अभी फिक्स हो गया, चार सब्जेक्ट को लेकर चार हमारी मुख्य धारणाएं। परंतु जो अन्य कर्मेंद्रियां हैं उनको भी तो हमें सीधे रास्ते लगाना है, नहीं तो वो हमको साइड सीन पर खींच के ले जाती हैं। कैसे, पहले स्थूल कर्मेंद्रियों पर आते हैं। कोई भी बात हमारे अंदर में सूक्ष्म में कब जाती है, पहले तो हम इन आंखों से देखते हैं, देखा और हमारे अंदर उसकी प्रवेशता होती है, फिर वो व्यक्ति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो, अन्य व्यक्तियां हो, वस्तुएं हो, पदार्थ हो, आकर्षण हो, माया हो, फल हो, फूल हो, अनाज हो, पेय पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है ना, ये भी अंदर एक बिंदु है, आत्मा भी बिंदु है, लेकिन ये एक बिंदु से हम क्या देखते हैं, इस प्रत्यक्ष आंख के बिंदु से हम साकार जगत को देखते हैं। उसमें पशु सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, प्राणी पक्षी सृष्टि और मनुष्य सृष्टि, ये सब हमको इस नेत्र से दिखाई पड़ती है। और आत्मा का जो बिंदु स्वरूप है, उस बिंदु से हम जो ये आंख से नहीं देखते वो उन आंखों से देखते, बराबर। तो आंखें हमारी जो भी देखती है तुरंत अंदर फोटो निकल जाता है और अंदर में आ जाता है। अब ये जो अंदर प्रवेश किया, अगर उसको हमने प्रवेश करके दिल में बिठाया तो क्या होगा? हम उसको पहले तो देख करके हमारे स्वभाव और संस्कार वो तुरंत उछल के उसके पास आते हैं, या फिर आंख उनके पास जाती है, क्योंकि गहरा संबंध है। जैसे बच्चा कुछ भी देखेगा तो माँ बाप के पास जाएगा, माँ बाप भी कुछ ऐसा देखेंगे तो बच्चे को बताएंगे कि देख क्या है, तो तुरंत उछल करके दिखाएंगे, तो वो तुरंत उनको अवस्था हमारी और स्थिति दोनों को वो दिखाता है कि ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये चाहिए। उसकी आकर्षण हमें बार बार ऐसे कराती है, मुड़ मुड़ के हमको दिखाती है, या तो फिर हमारी आसक्ति उत्पन्न करती है कि बस मैं ये चीज अपनी बना लूं, माना मैं खरीद लूं, इसको अपना बना लूं, अपने पास रखूं। ये सब विविध क्या कहेंगे अवस्था को बिगाड़ने वाली बातें, अपेक्षा, इच्छा, चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए ये चीज, हो तो मुझे ये फायदा हो, इसके बगैर मैं नहीं रह सकूं, इसीलिए मुझे चाहिए। खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ है तो बाबा कहते दिल बित बित करती है, मैं खाऊं मैं खाऊं। और अगर मैं किसी ऐसे स्थान पर हूं जहां मैं मालिक नहीं हूं तो मुझे छुपके से उठा करके खा लेने की दिल करती है। यहां तक मुझे अपनी आसक्ति चाहिए या जो भी अंदर में है खाने की बित बित मुझे घिराती है। तो आंखों से ऐसी कितनी चीजें हम साइड सीन के रूप में देखते हैं। देखने के बाद हम और सूक्ष्म चीजें भी देखते हैं जो मुझे चाहिए पर मुझे नहीं मिली। मुझे क्या चाहिए कि ये भाई ये बहन मैं ओम शांति करूं, वो भी मुझे सामने से ओम शांति करे। अच्छा, उसने ओम शांति किया तो मैं खुश, नहीं किया तो मेरे दिल में वो बात बैठ गई, फिर मैं उसको समा नहीं सकूंगी, वर्णन करूंगी कि मैंने उसको ओम शांति किया, उसने इतना भी सेंस नहीं दिखाया कि मुझे वो ओम शांति करे। कई उससे भी आगे बढ़कर व्यर्थ सोचते कि मैंने इतना मुस्कुराते हुए ओम शांति किया और उसने मुझे ओम शांति, मुस्कुरा के भी नहीं किया, कम से कम मुस्कुराने में क्या जाता था उसका। तो हरेक अपने अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत सोचता है, तो ये भी बड़ा विघ्न सूक्ष्म कि हर बात को हम तौलते हैं अपने स्वभाव और संस्कारों से। जब हम अपने स्वभाव संस्कारों से किसी को तौलते हैं तभी हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाली व्यक्ति क्या है, कैसी है, किन परिस्थितियों में है, किस अवस्था से वो गुजर रही है, हमें ये सब भूल जाता है, सिर्फ निज स्वार्थ याद रहता है, सिर्फ अपना ही स्वार्थ, मुझे जो चाहिए था वो मुझे उससे नहीं मिला। लेकिन क्यों नहीं मिला? अगर मुझे अनेक बार उनसे मिला और एक बार यदि मुझे उनसे नहीं मिला तो कोई रीजन होगा, कोई तो कारण होगा, तो हम ये नहीं सोचेंगे। लेकिन मुझे नहीं मिला, अपना स्वार्थ हम सोच के फीलिंग में आते हैं, तो ये फील करना भी बड़ा विघ्न है जो हमारी यात्रा में विघ्न डालता। मनुष्यों को तो छोड़ो, हम इंसान कहते भगवान को भी नहीं छोड़ता, तो हम बच्चे भी क्या करते हैं, बाप दादा को भी नहीं छोड़ते हैं फीलिंग के समय। हर एक अपने दिल पे हाथ रख करके अपने से पूछना, जब आप जैसी परिस्थिति, जिस विकट परिस्थिति से या आपके लिए जो बड़ी विकट परिस्थिति है उस परिस्थिति से आप जब गुजरते हो, तो आपके साथ में जो चलने वाले रहने वाले साथी हैं, उनको तो बराबर मदद मिली बाबा की। वो बड़े नाज से सुनाते हैं कि मुझे तो बाबा की ऐसी मदद मिली, मैं तो बाबा से गदगद हूँ, बाबा का मैं लाख लाख शुक्रिया मानती हूँ आत्मा। परंतु उसको नहीं मिली तो वो तुरंत याद में जब बैठेगी तो क्या करेगी, हमारे यहाँ के भाई लोग सुनाएं, क्या करेगी, फरियाद करेगी बाबा को, बाबा आपने उसको तो मदद की, मेरे को क्यों नहीं मदद की, बोलेंगे बाबा आपने उनको मदद की, मेरे को क्यों नहीं की, उसको ऐसा भाग्य मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला, मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ, आपका बच्चा हूँ। तो ऐसी फरियादें लेकर के हम अमृत वेले कितनी बार योग कर चुके हैं, उसको शक्ति मिलती मेरे को नहीं मिलती, बाबा मुझे शक्ति दो, मुझे ये दो वो दो, मान दो सम्मान दो। तो सोचो, आंख से गया तो सूक्ष्म पर भी असर पड़ा, फिर कान से गया, अब बहुत डिटेल करने जाऊंगी तो टॉपिक रह जाती है, फिर कान से सुना, अभी यहाँ सब आप आए हो, नेचुरली परिवार आपस में मिलेगा तो खुश खैराफत की बातें तो करेंगे ही, प्यार से मिलेंगे, गले लगेंगे, तो दो बातें करेंगे, और क्यों न करें। कल्प के बाद हम परिवार के सदस्य भी मिलते हैं, परंतु दो बातें करेंगे, उन दो बातों में क्या आ जाता है, बातें करते 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 हम किसी अलग ट्रैक पर भी चले जाते हैं, जिस ट्रैक पर मुझे जाना नहीं चाहिए। आंखों को जो नहीं देखना था वो आंखों ने देखा, विरुद्ध काम किया, गलत काम किया, अब कान भी गलत काम करने लगे, व्यर्थ सुनने लगे, तो मन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा। जिनकी आंखें अभी गलत काम कर रही हों, हाँ बंद हो गई हों, थोड़ा अंदर से माया खींच रही हो, तो गलत काम करने से बाहर निकल आओ, अभी थोड़ा कान खुले करो। कान को खुला करना माना ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सभी सुनो। हम फिर क्या करते हैं, बातें करते करते जो अलग ट्रैक पर चले जाते हैं तो व्यर्थ बातें करने लग जाते हैं, तो मुख ने व्यर्थ बोला, कानों ने व्यर्थ सुना, आंखों ने व्यर्थ देखा, तो मन ने भी व्यर्थ सोचना चालू कर दिया, फिर बुद्धि ने भी निर्णय देना शुरू कर दिया। अब जब कर्मेंद्रियां, नेत्र, कान, वाणी, मन, बुद्धि, तो स्वभाव कैसे वंचित रहेंगे? फिर स्वभाव ने भी कह दिया कि हाँ वो तो है ही ऐसे। फिर संस्कार, सच्ची बात है, ऐसे से तो हमको मिलना ही नहीं चाहिए, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। ऐसे बोलते हैं और बचते नहीं, माया के बच्चे बन जाते कि वो संस्कार अपने में डाल लिया, जो व्यर्थ देखा, व्यर्थ बोला, व्यर्थ सुना, व्यर्थ मन ने मान लिया, व्यर्थ बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, जो व्यर्थ जिसके प्रति था व्यर्थ, उस व्यक्ति का भी व्यर्थ, उसका व्यक्तित्व, उसकी पहचान हमने निर्णयात्मक रूप से बना ली, तो संस्कार भी उसमें शामिल हो गए। जब सब उसमें शामिल हो गए, सभी विरुद्ध दिशा वाले, हाँ, जब वो कोई एक पार्टी जीतती है ना, तो जो दूसरे उनके विरोधी दल होते हैं ना अलग अलग, वो सब एक हो जाते हैं, तो वो सब एक हो गए और मैं आत्मा अलग हो गई। अब मेरे पास यदि बाबा की याद का बल होगा तो मैं क्या करूंगी, सारी नकारात्मकता को, सारे विरोधों को जो स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा मेरे को विघ्न डालने आए, मेरे से युद्ध करके मुझे हराने आए, रॉयल रूप से मेरा सामना करने आए, मैं उन सभी को अपना ऐसा कौवत और कला दिखाऊंगी, जो मैं क्या करूंगी, हरेक को परिवर्तित कर दूंगी। ऐसी बाबा की जोरदार बातें उनको बताऊं कि वो भी अंदर में शर्मसार हो कि हाँ हमें तो ये बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, किसी के लिए गलत निर्णय लेकर के उसके व्यक्तित्व को नहीं बताना चाहिए, स्वभाव भी अंदर में, मन बुद्धि भी अंदर में कबूल करे कि हाँ मैं गलत रास्ते पर थी या था, इतना मेरा प्रभाव पड़ना चाहिए। जैसे एक योग कमेंट्री सभी को शांत कर देती है, ऐसे मेरा अकेली का क्या मैं एक व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डाल सकती? क्योंकि अक्सर बातें दो के बीच में, ज्यादा करके ऐसी बातें दो के बीच में, बताना नहीं किसको, समाना। जब मैं नहीं समा सकी और आपको बता दिया, तो वो भी तो किसी को बताएगा नहीं समा सकने के कारण। बाबा ने एक बार मजेदार बात बताई थी ये, कि मैंने मेरे खास को बताया, उसने उसके खास को बताया, उसने उसके खास को बताया, रिजल्ट क्या हुआ, सभी को पता चला। वो एक गेम भी करते हैं उसके लिए, आपको पता भी होगा कि राउंड बनाते हैं, ध्यान से सुनो, अपने अपने कमरे में करना, अगर आप 6-8 लोग हो तो करना, आप कान में पहले गोल बन के बैठना, फिर एक के कान में कुछ ऐसा सेंटेंस बोलना, थोड़ा सा लंबा हो, फिर उनको कहो उनको सुनाओ, दोबारा रिपीट नहीं करने का, उसने जो सुना, जैसा सुना, कम सुना, नहीं सुना, आपको दोबारा नहीं बताना है। फिर वो सुनेगा, वो सुन करके तीसरे को बतावे, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को। आप देखेंगे कि अंत में आप जब उसको पूछेंगे कि सबसे पहले ने क्या बताया, पूरी बात बदल गई होगी, सारे शब्द बदल गए होंगे, परिवर्तन। व्यर्थ में भी ताकत है परिवर्तन की। यदि व्यर्थ परिवर्तन कर सकता है तो हम समर्थ क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते? और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, उनमें तो सबसे ज्यादा शक्ति होती है, उनकी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होती है। तो वो जो शक्तियां हमारी ऊर्जाएं बन करके ऊपर आती हैं, साथ में ऊपर से बाबा की शक्तियां भी हमारे अंदर आती हैं, तो चारों तरफ से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो हमारे अंदर तो कितना बल होना चाहिए, कितनी ताकत होनी चाहिए, परंतु प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई पड़ती जितना हम सभी अपने में चाहते हैं कि मैं जब चाहूं, जो चाहूं, जैसा चाहूं, एक शब्द मेरा निकले वो तथास्तु हो, यानी वरदान हो। क्योंकि निकलता नहीं, उसका कारण हम तराजू लेकर के अपनी स्थिति अवस्था को यदि तौलने बैठेंगे तो परसेंटेज ज्यादा, पलड़ा जो है ना वो भारी कहाँ होता है, व्यर्थ में भारी होता है, नकारात्मकता में भारी होता है। सारे दिन में यदि 100 विचार मैंने व्यर्थ किए तो उसकी भेंट में यदि मुझे पलड़ा नीचे ले जाना है, मुझे विजय प्राप्त करनी है, तो 1000 सकारात्मक विचार मेरे उस पलड़े में होने चाहिए। अगर एक अशुभ बोल मेरे मुख से निकल गया तो 100 शुभ बोल उस दिन मुझे सजा के रूप में ही समझो, लोगों के लिए बोलना चाहिए या फिर अंदर में सोचना चाहिए। बाबा भी तो यही कहते कि तुम सच्चे दिल से मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें एक गुना, एक का कितना गुना दूंगा, पद्मा पद्म गुना, अभी अभी के आने वाली जनरेशन को। पहले बाबा बोलता था 10 कदम, फिर 100 कदम, फिर 1000 कदम, लाख कदम, और अभी आने वाले बच्चों में ताकत नहीं, तो भगवान अपनी ताकत उनको दे रहा है, कहता है पद्म गुना प्राप्ति होगी। परंतु प्राप्ति दोनों तरफ से, नकारात्मकता में भी उतनी प्राप्ति तो सकारात्मकता में भी उतनी प्राप्ति। नकारात्मकता में बाबा क्या बोलते हैं, अगर कोई विकर्म किया, अगर कोई पाप कर्म किया, बाप से प्रतिज्ञा करके निभाई नहीं, और यदि आपने तोड़ी, तो बाबा कहते हैं कितना गुना सजा के भागी बनेंगे, 1000 लाख गुना सजा के भागी बनेंगे। और उसमें भी बच्चे बन करके, यानी जज का बच्चा, अगर कोई भूल करे, पाप करे, तो उसको अधिक सजा प्राप्त होती है। तो अगर तुम बच्चे बन करके अगर भूल करोगे, पाप करोगे, विकर्म करोगे, तो तुम्हें भी धर्मराज अनेक गुना दंड देगा, इसीलिए रक्षाबंधन आती है कि हमें पक्का वो स्मृति दिलाती है कि मैंने स्वयं परमपिता परमात्मा से, भगवान से मैंने प्रतिज्ञा की राखी बांधी है, वो तो निभाएगा, निभाना हमको है। स्नेह करने में हम सभी पास हैं, और यहाँ जो बैठे हैं और आप जैसे और कई बाबा के बच्चे जो अपने अपने सेवा केंद्रों पर हैं, वो सभी निभाने में भी आज की घड़ी तक पास हैं, विजयी हो, तभी तो यहाँ बैठे हो, और आप सदा विजयी रहें, ऐसी हमारी और आप सब भी एक दो के प्रति ये शुभ कामना करते हो, करते हो तो हाथ उठाओ, सभी की ये शुभ भावना है। तो हम सभी की एक दो के प्रति शुभ भावना है, तो ये शुभ भावना, शुभ कामना, हमारी ही शुभ भावना, हमारी ही शुभ कामना किसके लिए विघ्न न बने उसका ध्यान भी कौन रखेगा? हमें ही रखना पड़ेगा। बाबा कहते ब्राह्मणों में इतनी ताकत है, समय आएगा आप जो सोचेंगे न वो होगा, आप जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे जब चाहेंगे वैसा होगा, निश्चय रखो ये बात का। इस पर एक कहानी याद आ रही है, वो सुनाऊं फिर मैं पूरा करूंगी मेरा क्लास। अर्जुन और कृष्ण, वो तो कृष्ण दिखाते हैं ना, अर्जुन और गीता के भगवान, तो अर्जुन और कृष्ण दोनों परम मित्र भी थे, आपस में दोनों मित्र थे। तो बचपन में तो सब उन्होंने धनुष विद्या वगैरह अपने गुरु से उनके आश्रम में सीखा, फिर जब ही द्रौपदी से विवाह हो रहा था तभी भी उन्होंने ऐसी परीक्षा रखी हुई थी, स्वयंवर जब हो रहा था तो एक कुंड में पानी और उस कुंड के अंदर एक खम्भ और उसके ऊपर एक घूमती हुई मछली, सभी ने सुना ही होगा, परंतु जो किस्सा मैं सुनाती हूँ वो किस्सा शायद कोई ने नहीं भी सुना हो। तो जो भी उनसे स्वयं वर में वरमाला पहनना चाहे उनको क्या करना था कि उस जल में देखते हुए और उस घूमती हुई मछली को छेदन करना था, उसकी आंख पर अपना तीर चलाना था। तो कृष्ण मित्र थे उनके अर्जुन के, तो उनको अंदर में भावना तो रहेगी ही कि अर्जुन विजयी बने, अर्जुन इनके इनके साथ स्वयंवर की वरमाला पहने। तो इसीलिए मित्र भाव से, जैसे हम भी अपने मित्र होते हैं तो कहेंगे ना, भाई आप मधुबन जा रहे हो, देखो वहां पर पहाड़ियां गिरी हैं, बारिश बहुत हुई है, 100 वर्ष में नहीं हुई इतनी बारिश हुई, आप संभालना, ऊपर जाओ तो इंक्वायरी करना, ट्रेन में जाओ तो भी इंक्वायरी करना, प्लेन में जाओ तो भी इंक्वायरी करना। हाँ, बहुत सारे हम डायरेक्शंस देंगे उनको, हाँ एक पूछेंगे कि देखो ध्यान रखना अपना। तो कृष्ण भी अर्जुन को बहुत सूचनाएं देने लगे, अर्जुन तूने बराबर तैयारी की है, तू बराबर फिट है धनुष बाण चलाने में, तू बराबर मारेगा ना, ध्यान रखना, उधर जल भी होगा वो भी हलचल वाला होगा, ऊपर मछली होगी वो भी घूमती हुई होगी, बराबर उसकी आंख में ही देखना और कहीं भी ध्यान न जाए तेरा, और एकाग्र चित्त रहना, कहीं भी तुम देखना मत, ऐसे बहुत कुछ उसको छोटी छोटी बातें भी उसको बताने लगे। अब ये भी तो मित्र ही था, तो वो मित्र आप अंदर में सोचने लगा कि एकाग्र चित्त भी मैं बनूं, मछली को छेदना भी मुझे है, मछली पर भी ध्यान रखूं, उसमें भी उसकी आंख का भी मैं ही ध्यान रखूं, जल में भी मैं ही देखूं, उधर भी मैं ही ध्यान रखूं, आजू बाजू न देखूं, ये भी मैं ही करूं, सब कुछ मैं करूं, और ये मेरा मित्र भगवान भगवान है तो ये करेगा क्या, मुझे क्या मदद करेगा। तो उसको संकल्प चला, तो उसने कहा कि कृष्ण सब कुछ मुझे ही करना है, ऊपर से तू सलाह देता है मुझे ही, सलाह भी मुझे ही दे रहा है, सब कुछ मुझे करना है तो तुम क्या करोगे, बताओ भगवान क्या करेगा फिर। हाँ, शुभ भावना रखेगा, क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलती हूँ वही जवाब है तो आप उठ के खड़े हो जाना। तो कृष्ण ने बहुत मीठा मीठा मुस्कुराया, हाँ बाबा हमारे, हम अर्जुन बच्चों के प्रश्न संशय, हाँ व्यर्थ बातें, हमारे सुबह सुबह होने वाले वकीलों के ड्रामा, काले कोट पहनकर जो करते हैं, सब बाबा देखते सुनते, फिर बाबा क्या करते हैं, बच्चों के भोलेपन पर मुस्कुराते हैं, प्यार है ना बच्चों के ऊपर, तो मुस्कुराते हैं मीठा मीठा, फिर मीठा जवाब देते हैं। तो जवाब दिया कि जो तू नहीं कर सकेगा ना वो मैं करूंगा, जिसने जवाब दिया उन्होंने ये बताया नहीं। चलो अच्छी नई बात मिली, इस बात से क्या समझा, बहुत गहरे राज की बात है। हम कहेंगे बाबा सब कुछ हम आपको देवे, तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, पत्नी भी तेरी कर दी, पति भी तेरा कर दिया, बच्चे भी तेरे कर दिए, घर भी तेरे को दे दिया, ट्रस्टी बन गए, ऑफिस तेरी, घर तेरा, मैं तेरा, सब कुछ तेरा, तो बाकी तू मेरे लिए क्या करेगा, मैंने तो सब कुछ तेरे को दे दिया। बाबा कहेगा तेरे लिए नई दुनिया बना रहा हूं, वो तो सभी के लिए बना रहा है, मेरे लिए पर्सनल क्या करेगा, आई बात समझ में। तो प्रभु तू मेरे लिए क्या करेगा, कभी बाबा को बोला आप लोगों ने कि बाबा तू मेरे लिए खास, मैं अकेली, आप लोग नहीं, कोई, कई बच्चे होते हैं ना कहते बस मैं ही आपका एक लाडला बच्चा, दूसरा नहीं, दूसरे को प्यार करेंगे तो जल जाएगा। तो मेरे लिए बाबा आप क्या करेंगे, बताओ उसका जवाब क्या होगा। उस पर भी एक बहुत अच्छी कहानी है, कईयों ने सुनी होगी वो, कदम कदम एक मिट्टी के अंदर पड़ते हैं और फिर एक जगह वो कदम भी मिट जाते हैं, तो बोला फिर यहाँ तो प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया ना, आपके कदमों के निशान भी नहीं है। बोला नहीं बच्चे, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, जब तू थक गया, चल नहीं पाया, जब सब कुछ तुझे चाहने, तुझे ये लगा कि सब कुछ मेरा हो, तो मैंने क्या किया, तुझे उठाकर अपनी गोदी में बिठा दिया, गोद का बच्चा बना दिया, दिल तख्त पर बिठा दिया, तेरे नाम विल कर दिया, वारिस बना दिया तुझे। तो हम सभी ने अपना अपना विल कर लिया, बाबा की विल में देख लिया, अपना नाम है, चेक कर लेना, पक्के वारिस बनना है हमको। तो मीठे मीठे बाप दादा, हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उसमें भी आप युगलों के ऊपर तो बाबा भी बलिहार जाते हैं, तो हम बहनें भी आप पर बलिहार जाती हैं, तो आप हमारे लिए भी क्या हो, वंदनीय हो सभी। हाँ, वंदे मातरम तो वंदे पितरुम भ्रातरम। साकार बाबा की बात मुझे याद आती है, हिस्ट्री हॉल में बाबा जैसे ही हॉल में आते थे ना, तो बाबा की निरहंकारिता और निर्माणता सोचो। बाबा जैसे ही द्वार पर पहुंचते थे तो पहले माताएं, जैसे अभी बैठी हैं, माताएं बैठी हुई होती थी, बाबा वहां रुकते थे और फिर हाथ जोड़ के बाबा बोलते थे वंदे मातरम। माताएं क्या समझती हो, जो नींद करे उसको मत सुनाना, वो पूछे कि क्या बोला दीदी ने जो सभी ने तालियां बजाई, ललचाना उसको ताकि दोबारा अच्छी तरह बैठे। परंतु मैंने देखा रिजल्ट 99.9, सभी बहुत, आप इतने अच्छे लिसनर बनके अर्जुन बनकर के बैठे थे। और ऐसे ही सदैव आप मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, आपके हर प्रश्नों के जवाब और बड़ी रमणीकताएं उसमें मिलती है बाबा की। तो कर्मातीत बनने के लिए हमें क्या करना होगा वो भी बाबा ने उसमें बताया है कि शांत रहें, स्वधर्म में जितना हो ना उतना शांत रहें, और उसके लिए मौन, अकेलापन और एकांत। एकांत माना ऐसे नहीं कोई हमारे आजू बाजू होवे नहीं, अकेले हो हम, नहीं, एक के अंत में, एक की ही याद में हम सोचें, याद करें, मनन करें, चिंतन करें, गीत गाएं, चाहे उसको प्यार करें, बातें करें, बस जो कुछ भी करें, किसके साथ करें, उस एक के ही साथ करने का अभ्यास करें। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा सिमरती में रहने का। कौन सी सिमरती? मैं अशरीरी अविनाशी आत्मा हूँ और बाबा भी अशरीरी अविनाशी है। अशरीरी बाबा मुझे लेने आए हैं, मैं अशरीरी बनूंगी तो मुझे वो ले जाएंगे। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, अगर मैं कहूँ, बाबा कहते हैं, अगर बाबा कहे कि एक सेकंड में बिंदु रूप की स्थिति में स्थित हो जाओ तो हो जाएंगे। ऐसा अभ्यास हो, बहुत घमसान हो चारों बाजू, प्रकृति का तांडव चल रहा है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ, हम दूर खड़े हैं, हमें मना की गई है कि कोई को आगे जाना नहीं है, हम उस समय उनको वाइब्रेशन देना चाहते हैं, एक सेकंड में हम ये कर सकेंगे? हम एकदम अशरीरी हो जाएं। तो अभी योगाभ्यास ही शायद करने का है, तो अभी यही अभ्यास करें, तभी हम अपने साधना से, ये साधना, ये जो अशरीरीपन का याद का अभ्यास है, हम याद के यात्रियों का, ये हमें अपने वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करेगा। और ये काम अपने परिवार में भी करना है, कोई व्यक्ति को शांत करने के लिए भी हमें अपने इस धारणा को मजबूत बनाना है। तो वायुमंडल व्यक्ति से, अभ्यास से, बाबा की स्मृति से, स्व की स्मृति से, स्वमान में स्थित होने से, स्वधर्म में स्थित होने से, स्व के श्रेष्ठ कर्म करने से, बुद्धि को, मन को, सब व्यर्थ से समेट कर और बाबा के अंदर समान कर। और जब मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तब हम उसमें विजयी बनेंगे और वो वायुमंडल हम बना सकेंगे जिसमें ताकत होगी। कैसी ताकत? एक दो मिनट लूं बिना बहन, एक मिनट लूं और साकार बाबा के पास। जब बाबा अंत समय में अव्यक्त होने से पूर्व जब साकार बाबा अव्यक्त होने लगे थे, तो हम लोग रोज अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले मुरली के भी पहले गुड मॉर्निंग करने जाते थे। तो बाबा बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते थे, हम गले लगते थे, क्योंकि बच्चे जो ठहरे गले लगते थे। बाबा का पहला पहला जो विचार सागर मंथन चलता था ना, वो बाबा हमें सुनाते थे। लेकिन धीरे 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 स्टेप वाइज परिवर्तन आता गया, हम गुड मॉर्निंग भी बोल नहीं पाते थे, शांत हो जाते थे बाबा को देखकर, गले लगने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। कहां बच्चे बनकर अधिकार से हक से तुरंत जाके गले लगते थे और बाबा भी ऐसे कर लेते थे। धीरे धीरे वो भी बंद हुआ। फिर बाबा वाणी चलाते थे, धीरे धीरे उसका समय भी कम होता गया। फिर ये समय आ गया कि हम जैसे ही द्वार पर आते थे, कुछ भी सोच के आते थे, ब्लैंक प्ले पार्टी हो जाती थी, बिल्कुल ब्लैंक पेपर, कुछ नहीं, बस बाबा और मैं। हम इतना शांति से कदम भर के इतना चुपचाप बाबा के सामने बैठ जाते थे, अपने आप ही होता था सब यांत्रिक। और फिर बाबा दृष्टि देते थे और हम उड़ जाते थे। तो अभी हम सभी इस ही वातावरण को लेकर बाबा को याद करते हुए बाबा की याद में बैठेंगे।
और क्या